भागवत सार की श्रृंखला में तीसरे स्कंद के तीसवें अध्याय पर चर्चा है। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावली। कपिल ने कहा तस्य तस्य इसी काल का जनह व्यक्ति नूनं निश्चय ही न नहीं अयम यह वेद जानता है उरुविक्रमम् महान पराक्रम काल्यमानः दूर ले जाया जाकर अपि यद्यपि बलिनः शक्तिशाली वायो हवा द्वारा इव सदृश घन बादलों का आवलि ही समूह। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान ने कहा, जिस प्रकार बादलों का समूह वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता, उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। तात्पर्य, महान राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो तो भी एक क्षण का समय काल वापस नहीं पाया जा सकता। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है और उसी अल्प अवधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है, किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाते वे अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाए जाते हैं जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाउं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे जो श्रीमद् भागवतम के प्रति हैं और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानन्दपाठाय प्रेमवशक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेरणा हृत्कंठयोस्फुरा।
हरे कृष्ण। तीसवां अध्याय तीसरे स्कंद का प्रारंभ कर रहे हैं भगवान कपिल, जहां से उन्होंने 29वें अध्याय में अंत में वर्णन किया था काल का, और इसीलिए यहां इस श्लोक में वो वर्णन करते हैं तस्य एतस्य। तस्य एतस्य मतलब इसी काल का, किस काल का, अभी अभी जिसका मैंने वर्णन किया है। तो तस्य एतस्य, एतस्य इसी काल का। तो पिछले अध्याय में वर्णन किया कि कैसे काल के प्रभाव से सब कुछ होता है, सूर्य अपने स्थान पर रहता है, देवता अपने अपने कार्य करते हैं, हवा बहती है, नदियां बहती हैं, ये सब काल के प्रभाव से हो रहा। तो ये सब वर्णन करने के बाद अब वो कहते हैं तस्य तस्य, इसी काल का प्रभाव मनुष्य पर कैसे होता है, अब उसको सुनो। तो अब उसका वर्णन वो आगे करते हैं। वैसे इस अध्याय का शीर्षक हिंदी में ठीक से ट्रांसलेशन नहीं है, इंग्लिश में क्या टाइटल है, एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज, और यहाँ लिखा है विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म नहीं, सकाम कर्मों के विरोधी या सकाम कर्मों के विपरीत प्रभाव। तो कोई व्यक्ति जब फ्रूटिव एक्टिविटीज अर्थात सकाम कर्मों में लगता है तो उसके क्या विपरीत प्रभाव होते हैं, एडवर्स इफेक्ट, तो वो हम लोग इसको इस अध्याय में सुन रहे हैं। तो पहले श्लोक से लेकर करीब 18वें श्लोक तक भगवान कपिल वर्णन करते हैं कि कैसे वो व्यक्ति जो अज्ञान में है, अंधकार में है, वो कैसा जीवन जीता है, कैसे आसक्ति का जीवन जीता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है। ये पहले भाग में, इस पूरे अध्याय को दो भाग में बांटा जा सकता है। तो पहले 18 श्लोकों में वो व्यक्ति जो अज्ञान में है वो कैसे जीता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, और 19वें श्लोक से आगे वर्णन है कि मृत्यु के बाद फिर कैसे वो नारकीय अवस्थाओं को भोगता है। तो ये अंतिम 19वें श्लोक से 34वें श्लोक तक वो वर्णन कर देते हैं। तो दो भागों में ये है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अच्छे उपदेश प्रभुपाद ने तात्पर्यों में दिए हैं और भगवान कपिल ने भी हमारी ही स्थिति को, मानो हमारे जीवन को देख रहे हों और लिख दिया है, बता दिया। इसीलिए जो शास्त्र हैं ये ऐसा नहीं है कि पूर्व काल में थे, उस समय के लिए थे, आज इनका कोई उपयोग नहीं है हमारे जीवन में। शास्त्रों का उपयोगिता सदैव रहती है, हर काल में रहती है, केवल कैसे उसको पालन करना है वो आचार्य आकर समझाते हैं अलग अलग कालों पर। तो इसीलिए ये नहीं मानना चाहिए कि ये तो पूर्व की बात है। अगर हम ये अध्याय सुनेंगे अभी, ये और आगे का अध्याय, तो जान जाएंगे कि ये हमारे लिए ही है। तो भगवान कपिल बताना प्रारंभ करते हैं तस्य 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 एतस्य, ये जो काल है जिसका भी वर्णन किया, इसका प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति इसके प्रभाव में, यहाँ वो वर्णन करते हैं कि भौतिक चेतना में संलग्न रहता है और प्रभाव को भूल जाता है। और जैसे बादल, उदाहरण दिया है कि बादल हवा की गति, हवा की शक्ति को पहचान नहीं पाता, तो बादल बना रहता है, तेज हवा आती है उड़ा कर ले जाती है। ऐसे ही काल है, जो व्यक्ति अज्ञान में है, काल के प्रभाव से अपरिचित है, उसके जीवन को काल ऐसे उड़ा कर ले जाता है उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम एक क्षण भी व्यर्थ करते हैं वो चला गया। प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य में, करोड़ों डॉलर आप कितना भी खर्चा कर लीजिए वो वापस नहीं आता है, कोई नहीं ला सकता उस समय को वापस जो समय चला गया है, क्योंकि समय बीत चुका है, अब समय है नहीं। जैसे हमने भागवत पढ़ना आज प्रारंभ किया, जो समय बीत गया वो बीत गया, अभी हम जो बोल रहे हैं ये बीत गया बीत गया, अब हम इसको वापस नहीं ला सकते। इसीलिए किसी भी अवस्था में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सब कुछ यहाँ काल के प्रभाव से है, हमारा जन्म, हमारा इस जन्म में जीवन बढ़ना और मृत्यु सब काल के प्रभाव में है। लेकिन अगर काल को व्यर्थ किया जाएगा, उपयोग नहीं किया जाएगा, तो फिर जीवन में क्या होगा ये अब इस अध्याय में हम सुनेंगे। इसीलिए एक भक्त के लिए आवश्यक है, भाव स्तर के भक्त का एक लक्षण है, कई लक्षण भाव स्तर के भक्त के बताए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम मतलब वो काल समय उसको व्यर्थ नहीं करता। ऐसे कई उसके लक्षण हैं, नामे रुचि, सदा भगवान का नाम लेता रहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण, क्योंकि वो काल को भगवान की शक्ति मानता है इसलिए व्यर्थ नहीं करता। हम लोग काल को अपनी शक्ति मानते हैं इसीलिए व्यर्थ करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है अभी, और समय हमारा है, जीवन हमारा है, अगर आपका होता तो आप उसको पकड़ कर रख सकते। कौन पकड़ कर रख सकता है? अगर जीवन आपका है, समय आपका है, जो समय चला गया उसको आप पकड़ नहीं पाए, और जो समय आएगा उसको पकड़ नहीं सकते, और जो समय बीत रहा है इस समय उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए व्यक्ति को प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं कि बड़ी अच्छी तरह से अपने काल का, समय का उपयोग करना चाहिए। तो जो व्यक्ति काल के महत्व को नहीं समझता, कैसे बहता है वो, कैसे बह जाता है जैसे बादल की तरह, तो आगे के श्लोकों में वो समझाते हैं क्यों होता है ऐसा, माया के प्रभाव से। तो भगवान कपिल कहते हैं वो माया के प्रभाव में आ जाता है और इसी जन्म को सब कुछ मानता है, आनंद लेना भोग करना इसको ही सब कुछ मानता है। माया दो प्रकार से कार्य करती है, माया के दो कार्य हैं, एक आवरणात्मिका और दूसरा प्रक्षेप आत्मिका। आवरणात्मिका अर्थात वो ढक देती है हमें, हमारे ज्ञान को ढक देती है, और प्रक्षेप आत्मिका नीचे की ओर खींचती है, केवल ढकती नहीं है नीचे की ओर खींचती है। तो ये दो कार्य माया के बताए गए हैं, या दो शक्तियां हैं माया की, आवरणात्मिका प्रक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका अर्थात जब वो एक आवरण डाल देती है, एक ढक देती है जीव को, उसके ज्ञान को, उसकी बुद्धि को, उसके प्रेम को, उसके कृष्ण संबंध को आवरण डाल देती है। इसीलिए जीव अज्ञान में चला जाता है, इसलिए जीव कृष्ण प्रेम को भूल जाता है, इसलिए जीव अपने संबंध को भूल जाता है कृष्ण से। ये आवरण पड़ा हुआ, सुनने के बाद भी हम लोग कई बार सुनते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, ये आवरण है माया का। इसलिए आवरण आत्मिका और प्रक्षेपात्मिका। प्रक्षेपात्मिका जो शक्ति है माया की, वो नीचे खींचती है, केवल ढक नहीं देती, अगर ढक भी देती तो चलो ठीक था, व्यक्ति अपनी स्थिति में बना रहता, खींचती है नीचे और व्यक्ति भोगों में पड़ता है, आनंद सोचता है इसी में। तो इसीलिए माया, भगवान कपिल आगे कहते हैं कि माया के द्वारा व्यक्ति इस तरह से भोगों में पड़ जाता है। और फिर जब माया का क्या प्रभाव होता है, फिर वो वर्णन करते हैं कि माया का ये प्रभाव होता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उसमें पड़ जाता है तो फिर अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना देश, अपना राष्ट्र, सब अपने को मानने लगता है। ये माया का प्रभाव, और मेरा ये घर है, बहुत बहुत अवस्थाओं का भी वर्णन होगा आगे, क्योंकि क्योंकि क्यों ऐसे हो जाता है, श्रद्धा निकल जाती है, भगवान पे से श्रद्धा नहीं रहती है। व्यक्ति माया में जब पड़ता है तो माया में पड़े हुए व्यक्ति का एक लक्षण है भगवान पर श्रद्धा ना होना। जिसको भगवान पर श्रद्धा है वो माया में नहीं रह सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना कि ये जो शक्ति है मम माया दुरत्यया, लेकिन कौन इसको पार करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मतलब जो मुझे शरण आते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वो माया से परे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में माया में रहने का अर्थ है वो व्यक्ति जिसे श्रद्धा नहीं है भगवान पर, जो अपने बल पर या जो आसपास की चीजों को देखते हुए भी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाता, या जो अपने जीवन में जो होता है उसको भगवान की योजना नहीं मानता, इसको अश्रद्धालु व्यक्ति कहते हैं। इसको अश्रद्धा धाना पुरुष कौन है अश्रद्धालु, जो जानकर भी देखकर भी कि उसकी कोई शक्ति नहीं है भगवान पर विश्वास नहीं करता, श्रद्धा नहीं है उसको, भगवान जो योजनाएं जीवन में बनाते हैं उनको समझ नहीं पाता, वो माया में पड़ा हुआ व्यक्ति अश्रद्धा धाना। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको कि कौन माया में पड़ा हुआ व्यक्ति है। जैसे एक बार युद्ध हो रहा था तो कुछ सैनिक युद्ध कर रहे थे, अचानक जो दूसरे शत्रु पक्ष के सैनिक थे वे बड़े प्रभावी हो गए, मारने लगे, तो इनको भागना पड़ा, तो जितने भी थे भागे अपनी जान बचाकर, तो उनमें से एक सैनिक पीछे रह गया, बाकी सब आगे भाग गए। अब ये अकेला भाग रहा है, शक्ति नहीं है, पीछे से सैनिक आ रहे हैं, अभी से लगा मैं तो मर जाऊंगा, कोई शक्ति नहीं है मेरे अंदर। तो उस समय उसने देखा कि एक गुफा है छोटी सी, तो अब शक्ति तो थी नहीं, तो सोचा इस गुफा में ही छुप जाता हूं, तो सीधा गया और जैसे ही गया तो गिर पड़ा, अंदर अंधेरा था, गुफा में गिर पड़ा, और गुफा में गिरते ही मुंह के बल गिरा। अब एक तो शक्ति नहीं थी, गिर गया और चोट लगी, अब उठ के भागने की भी शक्ति नहीं है, और पीछे से सैनिक आ रहे हैं। तो उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए। अब तो भगवान ही कर सकते हैं, ऐसा होता है। हमें एक बार, हम बेलगाम में आर्मी के कैंप में गए थे, तो वहां कुछ सैनिक वो बता रहे थे कि भले ही जीवन भर कोई कहे कि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जब सैनिक अकेला होता है युद्ध में, कुछ उसका रह नहीं जाती शक्ति, तब केवल भगवान को पुकारता है। तो ऐसे ये सैनिक भी भगवान को पुकारने लगा, रक्षा कीजिए। और उसने देखा कि जो एक गुफा का जो मुंह था, तो उसके ऊपर एक कीड़ा एक आकर अपना जाला बुनने लगा, स्पाइडर वो आकर अपना जाला बुनने लगा। तो जब वो जाला बुन रहा था तो इसके मन में आया कि भगवान मैंने आपसे रक्षा के लिए कहा और आपने भेजा किसको, ये मकड़ी, अरे ये जाला, मतलब जाला तो कोई भी तोड़ सकते, जाला कोई पत्थर डाल दिया होता कुछ होता, ये जाला तो कोई भी काट सकता, हाथ से निकल जाता है मकड़ी का जाला, और आपने भेजा तो स्पाइडर। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, मैंने रक्षा के लिए मांगा और किसको भेजा, एक कीड़े मकोड़े एक मकड़ी को भेज दिया जाला बनाने के लिए। खैर अब कुछ कर नहीं सकता था, शक्ति नहीं थी, अचानक सैनिक आ गए उतने में, तब तक ये जाला बना दिया था मकड़ी ने। तो सैनिक आए, इधर उधर घूमने लगे, यहीं होंगे ढूंढो, और एक ने कहा शायद ये गुफा में गया होगा, पकड़ो उसको बाहर निकालो। तो दूसरा सैनिक गुफा में जाने लगा, लेकिन उसने कहा नहीं, यहां पर तो मकड़ी का जाला है, अगर यहां गया होता अंदर तो जाले को काट के जाना होता, जाले को बिना काटे तो कोई अंदर नहीं जा सकता, मकड़ी का जाला है मतलब बहुत समय से कोई अंदर नहीं गया है, नहीं कहीं और होंगे, चलो। तो वो चले गए और उस समय उसको लगा भगवान ने मकड़ी को बेचकर मुझे बचा लिया। तो देखिए भगवान, जरूरी नहीं है भगवान को बड़े बड़े पत्थर या कुछ और चीजों से आपको बचाना हो, भगवान मकड़ी भेजकर भी बचा सकते हैं आपको। श्रद्धा होनी चाहिए, जब श्रद्धा टूट जाती है हृदय से तब हम माया में पड़ जाते हैं। तो इसी बात को भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि व्यक्ति माया में पड़ जाता है जिस स्थिति में है, कठिन स्थिति में है, जीवन की निम्नतर स्थिति में है लेकिन उससे निकलना नहीं चाहता। प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देते इंद्र की कथा का कि कैसे इंद्र एक बार सुअर बन गए और इंद्र सुअर बन गए, श्राप मिला, बड़े आराम से रहने लगे, मल खा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम लोग किसी सुअर को मल खाते देखते हैं तो हम लोग कैसा लगता है, अरे कितना गंदा एक मल खा रहा है, लेकिन सुअर को आनंद आता है, उसको ऐसा नहीं लगता मैं मल खा रहा हूं, उसको तो लगता मैं राजा हो गया, इतना आज फीस्ट मिल गया मुझे, तो उसके लिए वो फीस्ट है। तो इंद्र ऐसे ही थे और उस समय फिर भक्तों ने आकर बृहस्पति आए, ब्रह्मा जी आए, उसको कहा चलो वापस तुम्हें जाना है, कहां पड़े हो। इंद्र तैयार नहीं थे, इंद्र ने कहा इतना अच्छा गड्ढा छोड़ के मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग में ऐसा मिलता है गड्ढा। बृहस्पति ने कहा नहीं नहीं ये बदबू चीजें वहां नहीं है। तो बोले फिर जाकर क्या लाभ है। ऐसे ही कृष्ण हमें बुला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, और इतना ही नहीं वो गारंटी दे रहे हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः डरो मत। अब और क्या कहेंगे भगवान इससे ज्यादा बताइए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया सर्व धर्मान सारे धर्मों को छोड़ो, केवल मेरी शरण में आओ, मैं गारंटी दे रहा हूं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जितने भी अभी तक के पाप है मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, डरो मत मां शुचः। लेकिन फिर भी हम इंद्र की तरह हैं, पड़े हुए हैं तकलीफों में कष्टों में, लेकिन जब कृष्ण पुकार रहे हैं तो हम कहते नहीं ये गड्ढा वहां नहीं, आपके वैकुंठ में मैं नहीं आ सकता, मैं आपको समर्पण नहीं कर सकता। तो ऐसे वो वर्णन करते हैं कि कैसे फिर व्यक्ति ऐसे घर में पड़ा रहता है, बहुत आसक्त हो जाता है। उसकी आसक्ति कैसे होती है भगवान कपिल वर्णन करते हैं पत्नी और बच्चों में। तो पत्नी के प्रति बड़ा आसक्त होता है क्योंकि पत्नी बड़ी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करती हैं, तो मनुष्य को लगता है बस यही अमृत है, दूसरा कोई अमृत हो नहीं सकता। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जब ये आकर्षण बहुत बढ़ जाता है तो संतानें उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर संतानें उत्पन्न हो जाए तो कहना ही क्या है, फिर तो बड़ी तोतली आवाज उसकी कान में पड़ती है, लगता है मेरा जीवन सफल, बस मैं कुछ भी करूं बाहर कितना भी कष्ट हो दिन भर, लेकिन बस घर में आकर एक बार बच्ची ने कुछ कह दिया, बच्चे ने कुछ कह दिया, जीवन सफल। ये प्रभुपाल लिखते हैं तात्पर्य में कि यही सब है, भगवान कपिल भी कहते हैं। तो देखिए हमने पहले ही कहा था कि ये जो कह रहे हैं ये बस सब आप हम सब के लिए है, तो ऐसा मत सोचिएगा शास्त्रों में कुछ बातें कही गई हैं वो तो पुरानी है, सब आपके लिए कही गई है, हम सब के लिए कही गई। तो भगवान कपिल कहते हैं कि वो पत्नी से आसक्त होता है, पत्नी मीठी मीठी बातें करती है और उसके बाद संतानें हो जाती हैं और उनकी आवाज़ सुनकर तो कहना ही क्या, फिर तो बस ऐसा लगता है कि वैकुंठ मिल गया यहीं पर और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, है ना, जीवन सफल। ऑफकोर्स बाद में पता चलता है कि क्या होता है वैकुंठ। तो ऐसे व्यक्ति आसक्त होकर फिर उनके लिए ऐसे ऐसे कार्य करता है परिवार भोगपरण करने के लिए, पाप करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, भूल जाता है कि ये जो कार्य वो कर रहा है, इतना जो इंद्रियों में आसक्त हो रहा है, ये जो इंद्रियां हैं ये किस लिए मिली हैं, हमें भगवान ने इंद्रियां दी हैं भोग करने के लिए नहीं। आंखों से रूप देखना, कौन सा रूप, भगवान का रूप देखना चाहिए, तो आंखें इसलिए नहीं मिली कि हम भगवान के अतिरिक्त कोई रूप देखें, हमें कान इसलिए नहीं मिले कि भगवान के अतिरिक्त हम कोई और शब्द सुने, जिह्वा इसलिए नहीं मिली कि हम भगवान के ऑफर भगवान को अर्पण किए हुए प्रसाद के अलावा कोई और चीज का स्वाद लें, नसिका इसलिए नहीं मिली है कि हम भगवान को अर्पण किए हुए फूलों के अलावा या भगवान को अर्पण की हुई चीजों के अलावा किसी और चीज को सूंघें, और इसी तरह स्पर्श इंद्रिय इसलिए नहीं है कि हम भगवान के अलावा किसी और को स्पर्श करें या उसमें आनंद लें। तो इन चीजों में जब व्यक्ति आनंद लेता है भूल जाता है कि इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं, गोविंद भगवान हैं, इंद्रियों को आनंद केवल भगवान दे सकते हैं, क्योंकि वो गोविंद हैं, वो गोपाल हैं। गो यानी इंद्रियां, पाल यानी उनका पालन करने वाले, और वही स्वामी है, ऋषिकेश है। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी स्वामी। हम ये भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें। जैसे एक बार एक पिता वृद्ध हो गए, उनके तीन लड़के थे, तो उन्होंने सोचा कि अब धीरे धीरे इनको कुछ सिखाना चाहिए। तो एक दिन बुलाकर उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 5 दाने दे रहा हूं, चावल के, हर एक को 5-5 दाने दिए, और कहा कि 5 साल बाद मैं इसको वापस लूंगा, और उस समय जो इसका सबसे अच्छा उपयोग करेगा उसको मैं अपना धन दे दूंगा। तो 5 साल बाद वापस लेना है। तो पहले लड़के ने 5 दाने लिए और बाहर आकर फेंक दिए। उसने सोचा 5 साल बाद लेना है, कोई भी 5 दाने लेकर दे दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, पिताजी को थोड़ी पता रहेगा यही 5 दाने थे, नाम थोड़ी लिखा है दानों के ऊपर। तो उसने फेंक दिए दाने, कौन ध्यान रखे, फिर 5 दाने 5 साल बाद खरीद के दे देंगे। दूसरे पुत्र ने उन 5 दानों को एक बहुत अच्छे पात्र में रखा और पूजा करने लगा उन 5 दानों की, कि इससे मुझे सारा धन मिलने वाला है, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, यही हमारी प्रार्थनाएं हैं। प्रभुपाद कहते थे शुद्ध भक्ति नहीं है, क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, भगवान को अंत में आपकी भक्ति कर रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, और सुख संपत्ति घर आवे साथ साथ कष्ट मिटे तनका, तन में भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंजॉय कहां से करूंगा, भोग कहां से करूंगा। कि बताइए आपने बहुत धन दे दी और डायबिटीज दे दी तो स्वीट नहीं खा पाऊंगा, इसीलिए कष्ट मिटे तन का, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रयास करते रहते हैं। तो 5 उसने फेंक दिए दाने, दूसरा पूजा करने लगा, लेकिन जो तीसरा पुत्र था उसने वो 5 दाने बोए जमीन में, और 5 वर्षों में धीरे धीरे उससे जो फसल आई, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, उसका काफी बड़ा खेत हो गया, उसने उनसे बहुत बड़ा खेती कर लिया। तो अब स्वाभाविक है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तीनों पुत्रों में से किसे भगवान उसके पिता ने धन दिया होगा, पहले पुत्र को या दूसरे को, हाँ तीसरे को, स्वाभाविक है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता। तो हम सबको भी हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण ने 5 दाने दिए हैं, 5 इंद्रियां, और वो देख रहे हैं कि हम इसका क्या उपयोग कर रहे हैं। तो कोई लोग होते हैं जो इसको फेंक देते हैं, झूठा वैराग्य, फल्गु वैराग्य, भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है, आत्मा का कोई निर्गुण नहीं होता, आत्मा की कोई आकार नहीं होता, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो सब फेंक देते हैं दानों को, अच्छे भले भगवान ने, पिता ने दाने दिए उसको फेंक दिया। दूसरे होते हैं जो पूजा करते हैं, भोगी लोग, कि इसी से सब कुछ, इन इंद्रियों से ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है, बस इंद्रियों का भोग करता रहूं, इंद्रियों से सब कुछ मिल जाएगा, तो जीवन भर इंद्रियों के भोग में लगा रहता। और तीसरे जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसका सही उपयोग करते हैं, इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी, क्योंकि बीज कहां से आते हैं, बीज भूमि से आते हैं, तो बीज के स्वामी भूमि है, इसीलिए भूमि में पुनः डालने से फिर और फसल आती है, फिर और डालिए फिर फसल आती है। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं, अगर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में, अर्थात अपने इंद्री नामक बीज को भगवान नामक भूमि में अगर हम बोते हैं तो फिर प्रेम नाम की फसल आती है। तो इसीलिए ऐसे हमें कार्य करना चाहिए। लेकिन जो नहीं करता, आसक्त रहता है, फिर कई उपायों से घर चलाता, हत्या करता है, भूल जाता है कि उसको पाप लगेगा। जिस हमारे लिए जो धन हम लेके जाते हैं, जो धन यहां वो कमाता है गलत इरादे से, वो जो धन हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन धन का प्रभाव जाता है, ये जान लीजिए, व्यक्ति को धन नहीं जाता, धन का प्रभाव। जैसे कोई प्रश्न कर सकता है, अगर मैंने गलत तरीके से धन कमाया भी लेकिन मृत्यु के बाद में उसको लेके नहीं जा रहा हूं, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर मुझे क्यों दंड मिलना चाहिए? मैंने कमाया ठीक है, लेकिन अब तो नहीं ले जा रहा ना, तो मृत्यु के बाद दंड क्यों मिलना चाहिए? तो प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बोलते हैं अगर किसी चोर ने चोरी कर ली, चोरी की, और अगर वो पैसे वापस दे दे तो क्या उसको दंड नहीं मिलता है? चोर ने बहुत चोरी की और बोले अच्छा ठीक है अपना पैसा वापस, नहीं उसको दंड मिलेगा ही, पैसा भी वापस लेती है पुलिस, दंड भी देती है ना। कभी कभी चोर पकड़े जाते हैं, उनके पास से सारा पैसा निकालते हैं और जिसका है उसको वापस भी देते हैं लेकिन दंड भी देते हैं। तो इसी तरह भले हम पैसा लेके नहीं जा रहे हैं, हम तो यहां छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने कार्य किया इसीलिए दंड मिलता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद बताते हैं कि जिनके लिए वो ये सब करता है, जिनके लिए वो पाप करता है, उनको उस पाप का बहुत कम फल मिलता है। प्रभुपाद कहते हैं जो नेता है, जो करता है, उसको ज्यादा फल मिलता है, उसको ज्यादा दंड मिलता है। मतलब जैसे आप लोग कथा जानते हैं कि जब नारद मुनि पहुंचे, रत्नाकर डाकू के पास, मार रहा था, काट रहा था, मरा ये मरा वो मरा, तो उन्होंने कहा इतना पाप करते हो किस लिए? परिवार चलाने के लिए। फिर उनके जाकर पूछ के अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से कि तुम जो पाप कर रहे हो क्या वो उसके भागी होंगे, वो पाप लेंगे? तो जब जाके पूछा तो उनका हम क्यों पाप लेंगे, आपका कर्तव्य तो हमारे हमें पालन करना, तो आप जैसे लाए वो आपकी चिंता। इस जगत में भी हम देखते हैं अगर कोई चोरी करता है, हत्या करता है, तो उसके परिवार को दंड नहीं दिया जाता, हालांकि वो पैसा उनके लिए कमाता है, चोरी उनके लिए करता है, हत्या उनके लिए करता है, लेकिन उनको दंड नहीं मिलता है। उस व्यक्ति को फांसी उस व्यक्ति को होती है, जेल उस व्यक्ति को होती है। तो इस जगत में भी ये नियम है। तो इसी तरह जो पाप करता है, भले ही उसने परिवार के लिए किया हो, वो जाके एक व्यक्ति जिसने हत्या की है वो आकर खड़ा होकर जज के सामने कह नहीं सकता योर ऑनर मैंने तो अपने परिवार चलाने के लिए किया है इसलिए मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए। नहीं, परिवार चलाने के लिए अन्य मार्ग है। तो इसी तरह उसे भी दंड मिलता है। और जब वो व्यक्ति बहुत कार्य करता है, परिवार चलाता है, और अंत में जब वो परिवार चलाने के योग्य नहीं हो जाता, भगवान कपिल बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उसका जीवन एक कुत्ते की तरह हो जाता है, गृहपाल इस शब्द का इस्तेमाल किया हूं, घर में पालतू कुत्ते की तरह रहता है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, कुछ कमा नहीं सकता, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि तो बेकार आदमी, इसको कुछ पता नहीं। तो बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता, कमा नहीं पाता, तो घर वाले ही उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, घर वालों के लिए वो कुत्ते के समान हो जाता है, लेकिन फिर भी आसक्ति इतनी है, भगवान कपिल कहते हैं इतनी आसक्ति है कि घर छोड़ता नहीं है वो। देखिए ये है जीवन, है ना, शास्त्र सही कहते हैं ना, कोई गलत कह रहे हैं भगवान कपिल? इतना आसक्त होता है जैसे धृतराष्ट्र, उसको भी तो यही कहा विदुर ने, तो यहां पर भी भगवान कपिल यही कह रहे हैं कि इतना आसक्त हो जाता है, शायद विदुर ये सुनकर गए होंगे इसीलिए जाकर उन्होंने धृतराष्ट्र को कुत्ते की तरह रह रहे हैं। यहां पर ये शब्द इस्तेमाल किए भगवान कपिल ने, तो इतना आसक्त कि जब ऐसे लोग आदर नहीं करते, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है घर में, लेकिन फिर भी बना रहता है, क्यों? आसक्ति है, सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे लड़के ने लात मार दी, कोई बात नहीं, मेरा ही लड़का है ना, बचपन में छोटा था तब गोद में बैठकर लात मारता था, बाहर खड़ा होकर लात मार रहा है, कोई बात नहीं, मेरा ही बेटा है, राइट? तो आसक्ति इतनी है, उस समय भी नहीं छोड़ता, और मरने वाला है। देखिए व्यक्ति मरता, जब मरने की इच्छा हो, जब मरता है, उसका भी वर्णन है कि कैसे मरता है, तो उस समय भी जब मर रहा है तो बूढ़ा हो जाता है, तकष्ट सहता है, अब मृत्यु आई है तो मरना भी चाहता है, तो अपने सारे रिश्तेदारों के आसपास कि सबको रोते हुए देख कर जाऊं मैं। प्रभुपाद लिखते हैं अच्छी मृत्यु वो है जहां व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की बिना जानकारी के मरता, उनको पता भी नहीं है और कहीं जाकर मरता, ये सबसे अच्छी मृत्यु है, क्योंकि आसक्ति नहीं होती, जब वो अपने अपने रिश्तेदारों को लेटा हुआ है, मर रहा है, अपने रिश्तेदारों को देख रहा है, ये रो रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, मेरा बच्चा भी रो रहा है, हाँ हाँ उसने मुझे लात मारी सब किया लेकिन अभी रो रहा है, कितना मेरा प्रेम है, या मेरा वो छोटा सा पोता रो रहा है, बहुत अच्छा है, आसक्ति बढ़ जाती। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे मरना चाहिए, पता भी नहीं हो फैमिली वालों को, परिवार वालों को कहां पे मरा। लेकिन व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, मरने के बाद बड़ा जुलूस निकलना चाहिए मेरा, कम से कम 500,000 लोग आने चाहिए। मर जाता है खुद तो देख नहीं पाता वो जुलूस उसकी तो आंखें बंद है, लेकिन इच्छा पहले ये है कि बड़ा जुलूस निकलना चाहिए, बहुत सारे लोग आने चाहिए मेरी मृत्यु हो तब। अरे तुम रहोगे कहां देखने के लिए उसको तो ऐसे तो मरने के समय भी बड़ा आसक्त होता है, वर्णन किया है भगवान कपिल भयभीत हो जाता है और मलमूत्र त्याग देता है। देखिए ज्यादातर लोग मरने के समय मलमूत्र त्याग देते हैं क्योंकि डर जाते हैं, एकदम डर में मलमूत्र निकल जाता है, भयभीत, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और ऐसी अवस्था में जब उसकी मृत्यु होती है, वो आसक्त होकर डर से वो छोड़ता है, यमदूत आते हैं। अब भगवान कपिल इसके आगे वर्णन करेंगे उस व्यक्ति का जो पापी है, जिसने ऐसे मार्ग को लिया है जो पशु जीवन के लिए, जैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसको ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं, आत्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह, जन्म मृत्यु। तो ये कई प्रकार के होते हैं, प्रमुखतः दो प्रकार का स्थानांतरण होता है आत्मा का, एक ऊंचे लोकों में और वैकुंठ में, और दूसरा नीचली योनियों में और पशु समाज नरक इत्यादि में। ये दो प्रकार के, अपने आप को बनाए रखकर या ऊंचे जाता है या फिर नीचे चला जाता है, या बने रहता है कम से कम मनुष्य। तो ऐसे जब कार्य होते हैं तो मृत्यु के बाद, अब वर्णन कर रहे हैं भगवान कपिल उस व्यक्ति का जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, अपना समय बर्बाद किया केवल परिवार कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए, जिसने समय बर्बाद किया, ऐसे व्यक्ति के लिए अब वो वर्णन करते हैं कि किस तरह वो व्यक्ति को लेकर जाते हैं। अब उसकी आगे की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह और किस धन को वो लेकर जा रहा है उस यात्रा में। तो उस यात्रा में जैसे हमने बताया कि अपने कर्मों के धन को ले जाता है वो, इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि चाणक्य पंडित एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अपने धन को, क्योंकि हम लोग जो धन कमाते हैं और कैसे उसका उपयोग करते हैं उसका प्रभाव मृत्यु के बाद लेकर जाते हैं, इसीलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि अपने धन को सत्कार्यों में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्कार्यों में उपयोग करोगे तो वो प्रभाव लेकर जाओगे, अगर असत्कार्यों में करोगे, असत तृष्णाओं में करोगे तो फिर वो प्रभाव लेकर जाओगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने धन का उपयोग सत्कार्यों में करे, ताकि जैसे आगे एक स्थान पर दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर धन को शुद्ध करना है तो जितना धन कमाया उसमें से जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं बाकी धन शुद्ध हो जाता है। तो अगर सही दृष्टि में अपने परिवार वालों की भी चिंता है कि मेरे जाने के बाद उनका अच्छा हो, तो व्यक्ति को अभी धन सत्कार्य में लगा देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि बाकी का धन जो वो इस्तेमाल करने वाले हैं कम से कम वो अशुद्ध ना हो, शुद्ध धन इस्तेमाल करें। तो ऐसे जिस व्यक्ति ने नहीं किया तो फिर उसको यमदूत आकर निकालते हैं और ऐसा वर्णन करते भगवान कपिल की उसको एक शरीर दिया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि शरीर तो यहां रह गया, यमदूत ले किसको जाते हैं, खाली आत्मा को ले जाएंगे तो आत्मा को कष्ट कैसे होगा। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक योनि, एक यातना योनि, यातना शरीर दिया जाता है, और बहुत बढ़िया शरीर है ये यातना शरीर, बहुत महत्वपूर्ण। उनको बोलो जरा आंखें खोल कर बैठे, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, आप नहीं जाएंगे हम जानते हैं, लेकिन दूसरों को बताने के लिए याद रखिए। यातना शरीर दिया जाता है और यातना शरीर बहुत बढ़िया होता है, इस शरीर से बहुत अच्छा है। क्यों? इस शरीर में ज्यादा कष्ट होता है, व्यक्ति मर जाता है। उस शरीर में मरते नहीं हैं, केवल कष्ट भोगते हैं। आपके शरीर को काटा जाता है बिना एनेस्थीसिया दिए, चिक 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 कटता है, पूरा ऐसे खुल जाता है, आंतड़ियां बाहर निकलती हैं, बाकी सारे आप ऐसे उड़ते हुए देखते हैं, ये मेरा पैनक्रियस जा रहा है, मेरी किडनी जा रही है, देख रहे हैं कितना दर्द हो रहा है। दर्द वही होता है जो शरीर काटने में हो रहा है, लेकिन मरता नहीं आदमी। अभी शरीर में आपको काट दे बिना एनेस्थीसिया दिए और अंग निकाल ले, आदमी मर जाएगा, लेकिन वो बहुत बढ़िया शरीर है, बिल्कुल नहीं मरता आदमी। काट दिया जाता है, उसको टुकड़े किए जाते हैं तो भी नहीं मरता, एक एक टुकड़े को देखता है लेकिन मरता नहीं, बहुत बढ़िया शरीर दिया हुआ भगवान। तो यमदूत वैसा शरीर देते हैं और फिर कोड़े मारते हुए लेकर जाते हैं उसको, और 99,000 कोस की दूरी उसको तय करनी होती है। 99,000 कोस मतलब एक कोस मतलब 8 मील, 8 मील कितना हो गया, 792,000 मील की दूरी उसको तय करनी है। और कैसे? नंगे पांव, और बड़ी कड़ी धूप है, नीचे आग है ऊपर से धूप है, और उसमें मारते हुए ले जाते हैं। और भगवान कपिल कहते हैं कि इतना ही नहीं, रास्ते में कुत्ते काटते हैं उसको आकर, और यमदूत याद दिलाते हैं ये तुमने पाप किया था, याद है? नहीं आया? थड़ा याद आया? हाँ याद आया। फिर लेके जाते हैं आगे, फिर याद दिलाते हैं, थड़ा याद आया? बोले नहीं, नहीं आया, थड़ा हाँ याद आया, किया था ना तुमने? हाँ किया था। तो ऐसे मारते हुए याद दिलाते हुए लेकर जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जब व्यक्ति जा रहा होता है नरक की ओर, तो सारे उसके पापों को याद दिलाया जाता है उसको, कौन कौन से जीवन में पाप किए थे। हम तो अभी भूल गए हैं, राइट? आप में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि कौन से पाप आपने जीवन में, हमें भी याद नहीं है, हम लोग सोच रहे बहुत बड़े भक्त हो गए, है ना, अभी तो कोई पापी जीवन नहीं है, तो सब भूल गए हमने जो पाप किए थे। लेकिन वो दिलाएंगे याद, एकदम थप्पड़ मार मार के, कोड़े मार के, याद आया ये किया था? बोले हाँ किया था, किया था, क्यों किया था वो पता नहीं, धड़ा हाँ हाँ इसलिए किया था, ठीक। फिर आगे जाता है, ऐसे 99,000 कोस जाना है, 792,000 मील दूर, या और जो भी कैलकुलेशन हो उतना हमें जाना लगता है। तो मारते मारते याद दिलाते, पापों का याद दिलाते, बड़ा मारते। भागवत में सो रहे थे, सोए कि नहीं? बोले नहीं सोए, पड़ा हाँ सोए थे, ठीक है। तो ऐसे सब याद कराते हुए लेके जाते हैं वहां पर, और वहां भी जाके ऐसे नहीं है कि बड़े प्रेम से रखते हैं कि आइए आइए, यमराज कहते हैं स्वागत है आपका, महान व्यक्ति आप, कितने आप महान हैं, करोड़ों रुपया आपने कमाया, कितना आपने, आप ही के कारण सारे जुए खाने चल रहे हैं, बहुत धन्यवाद आइए। भगवान वो यमदूत ले जाते यमराज के पास, और उनका कार्य है दंड देना, मारना नहीं। तो इतना दंड देते हैं कि बस मरना नहीं चाहिए, तो मरता है ही नहीं क्योंकि शरीर ऐसा दिया है। तो फिर उसको जलते हुए तेल में फेंक दिया जाता है, उबल रहा है तेल, खौल रहा है, जैसे पकौड़ा फूलता है ना, हम लोग फेंकते हैं ना वो बेसन लगा के पकौड़ा, और फिर पकौड़ा ऐसे फूल जाता है, तो हमारे शरीर, हाथ फूल रहा है, पैर फूल रहा है, मुंह फूल रहा है, दिखाई दे रहा शरीर, लेकिन मरता नहीं व्यक्ति। ये यमदूतों की कृपा है, यमराज की, मरता नहीं है बस। फिर उसके शरीर को काटा जाता है, उसके अंगों को काट के जलाया जाता है उसके सामने, मरता नहीं है, देखता रहता। आंखों को, ऐसा भी वर्णन है एक जगह पे कि आंखों को खींच कर ले जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, अरे आंखें चली गई तो देख कहां से रहे हैं, लेकिन फिर भी दिखता है शरीर, इतना बढ़िया है, यमदूतों की कृपा है, आंखें निकाल रहे लेकिन दिख रहा है कि मेरी आंखें लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए व्यक्ति को, जो बड़ा आसक्त है, जिसने बड़े पाप किए, तो उसको तामिश्र, अंध तामिश्र इत्यादि यहां पर वर्णन, इनका नरकों का वर्णन आगे आएगा विस्तार से 5वें स्कंद में। तो उस समय पे सारे रौरव, महारौरव, अंध तामिश्र, तामिश्र, सब सब बताया जाएगा आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आपके लिए 28 बढ़िया स्थान पांचवें स्कंद में आने वाले हैं, उन सब के लिए जो पापी हैं, आप लोगों के लिए नहीं, जो पापी हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसे बताया जाता है कि ऐसे वो करते हैं और उनको फिर दंड देते हैं, और ऐसे दंड मिलते मिलते क्यों दिया जाता है। दरअसल प्रभुपाद समझाते हैं कि नरक एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर मतलब जहां पर जीव को अगले जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि अगर सीधे व्यक्ति को, मान लीजिए आपने ऐसे कार्य किए कि आपको कुत्ता बनना है, सीधे इससे आपको कुत्ते की योनि में भेज दे तो आप मुंह से खा नहीं पाओगे, भौंक नहीं पाओगे, तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपको चाकू छुरी से खाने की आदत है, चम्मच से खाने की आदत है, कुत्ते बन गए तो मुंह से कैसे खाएंगे। इसीलिए नरक में ट्रेन किया जाता है, वहां ले जाके मार मार के विश्वास दिलाया जाता है तुम कुत्ते हो। जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाता कि मैं कुत्ता हूं, उसको कुत्ते की योनि में नहीं भेजा जाता। जब विश्वास हो जाता है तब कुत्ते की योनि में भेजा जाता है। क्यों? सुखी रहे वहां पर। क्योंकि अगर कुत्ते को यह विश्वास है कि मैं आदमी हूं, वो सुखी कैसे रहेगा वहां पर। वो सोचेगा मैं आदमी हूं कि मुंह से खा रहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो पनीर मसाला चाहिए खाने के लिए, ये क्या मिल रहा है, लोगों ने फेंक दिया कुछ, मैं नहीं खाऊंगा। तो उसको विश्वास होना चाहिए कि वो कुत्ता है। तो ये विश्वास नरक में दिलाया जाता है, मार मार के बड़ा मारा जाता है। जब तक उसको पूरा बोलता नहीं, पूरा विश्वास हो जाता है, भौंकने लगता है कुत्ते की तरह, तब जाएगा चलो। तो इसीलिए नरक ऐसे बनाए गए हैं। और फिर ये सब हम लोगों को समझाने के लिए है। और अंत में बहुत सुंदर बात दो श्लोकों में कहते हैं भगवान कपिल की, अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अर्थात गलत साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहते हैं, वे निश्चय ही अंधतामिश्र नामक गहनतम नरक में जाता है। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाता है। अर्थात एक बार पाप करने के बाद नरक भोगना, नरक के बाद कई पशु योनियों को भोगना, और कई पशु योनियों में होते हुए फिर वो मनुष्य जीवन में आता है। तो ये सब बताने का सार या भगवान कपिल ये सब क्यों समझा रहे हैं, ये केवल इसलिए कि व्यक्ति को ज्ञान में आना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए, जिससे वो ऐसी जीवन की निम्न अवस्थाओं में ना पड़े जिससे मृत्यु के बाद उसको नरक का दर्शन करना पड़े। इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि 5 दाने दिए हैं हमारे पिता ने हमें, तो उन 5 दानों का सही उपयोग करना चाहिए। हमारी आंखों को भगवान के सुंदर रूप के दर्शन में लगाना चाहिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना नलकूबर और मणिग्रीव करते हैं, दामोदर लीला जब हुई भगवान ने की और इन दोनों का उद्धार किया तो दोनों प्रकट हुए, दोनों ने प्रदक्षिणा की भगवान की, कई प्रार्थनाएं अर्पण की और अंतिम प्रार्थना बहुत सुंदर उन्होंने की, और वो एक ही चीज मांगते हैं, ये हम सबके लिए सुंदर प्रार्थना है। और वो कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोने स्मर्त्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुना। बहुत सुंदर प्रार्थना नलकुवर मणिग्रीव की। और नलकुवर मणिग्रीव की प्रार्थना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सब ये कर रहे थे, ये सारे कार्य वो कर रहे थे, स्त्री संग करना, शराब पीना, अहंकार में रहना, धन का अहंकार, ये सब था। लेकिन देखिए उनकी प्रार्थना, उन्होंने क्या प्रार्थना की भगवान से, उन्होंने ये नहीं कहा हमें मुक्त कर दीजिए, उन्होंने कहा वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है ये केवल आपके गुणगान में लगे, इतनी हमारी ये प्रार्थना हर एक भक्त को करनी चाहिए, हृदय से करनी चाहिए भगवान को, कि हमारी वाणी सदैव आपके गुणों का गुणगान करने में लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, और जो हमारे कान हैं, हमारी श्रवण इंद्रिया है, तो एक कानों को क्या उपयोग हो, श्रवणों कथायाम, सतत आपकी कथा सुनती रहे बस, और कुछ नहीं हो, वाणी आपकी कथा बोलती रहे और कानों से हम आपकी कथा को सुनते रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम हस्तौ च कर्मसु, और जो हमारे हाथ हैं या अन्य इंद्रियां हैं, हाथ पांव इत्यादि, हमारा शरीर कर्मसु आपकी सेवा में लगा रहे। मैं आपके मंदिर को साफ कर सकूं, मैं आपके श्री विग्रह का श्रृंगार कर सकूं इत्यादि। हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोने, और जो मेरा मन है वो आपके चरण कमलों में लगा रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोने स्मर्त्याम शिरस, तो आपके चरण कमलों का स्मरण हो हमेशा मेरे मन में, और शिर सिर तब निवास जगत प्रणामे, मैं हर व्यक्ति को हर चीज को इस जगत की प्रणाम कर सकूं ये जानकर कि उसमें आपका निवास है। तब निवास जगत प्रणामे, तो हर व्यक्ति को जगत के हर चीज को मैं प्रणाम कर सकूं, अर्थात हर स्थान पर हर चीज में हर व्यक्ति में मैं आपको देख सकूं, ये मेरी प्रार्थना है। तव निवास जगत प्रणामे, और अंत में कहते हैं दृष्टि, मन हो गया, आंखें हो गई, कान हो गया, दृष्टि, दृष्टि से क्या होना चाहिए, आंखों से, कानों से हमने सुन लिया, जिह्वा से कह दिया और मन को लगा दिया, हाथों को लगा दिया, अन्य इंद्रियों को लगा दिया, आंखों का क्या, दृष्टि क्या होनी चाहिए, दृष्टि हाँ भगवान के सुंदर रूप को देखना, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनु नाम, हमारी दृष्टि सदैव भक्तों की ओर रहे। सताम, ऐसे लोग जो सत्य के मार्ग पर हैं, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि सताम दर्शने, हम उनके दर्शन कर सके, वो भगवान के दर्शन की भी कामना नहीं करते कि हम आपके दर्शन कर सके, वो कहें भक्तों के दर्शन कर सके। दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनु नाम, बस ये सदैव होता रहे, इतनी प्रार्थना। उन्होंने मुक्ति नहीं मांगी, उन्होंने धन नहीं मांगा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश काम ये, तो उन्होंने बस ये मांगा कि बस इतना करते रहे। तो इस अध्याय का सार ये है कि हमें जो शरीर मिला है, जो इंद्रियां मिली हैं, उसको भगवान की शक्ति समझकर भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की कृपा समझकर भगवान की सेवा में लगाएं, और इसी के द्वारा हम यमराज के चंगुल से बच सकते हैं। यमदूतों के वो जो याद करिए कि यमदूत जब याद दिलाएंगे आपको सारे पाप, तो बड़ा कष्ट होगा, तो उससे हम बच सकें। इसीलिए आगे छठे स्कंद में यमराज जब उपदेश देते हैं तो बहुत सुंदर बात वो कहेंगे, वो अपने यमदूतों को आदेश देते हैं कि जिसके भी गले में ये तुलसी की माला देखो और जिसके मुख पर कृष्ण का नाम सुनो, जिसके मुख से, वो तुम्हारे अधिकार से परे है, उसको स्पर्श नहीं करना, बाकी सारे लोगों को लेकर आओ, लेकिन जो लोग भगवान का नाम ले रहे हैं उनको नहीं। इसीलिए सतत भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी के द्वारा आध्यात्मिक जगत में जाकर जो हमारे शाश्वत परिवार हैं उसमें आसक्ति बढ़ानी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण लोक में भी परिवार हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, सब हैं, तो उस परिवार और इस परिवार में अंतर क्या है, उसमें आसक्ति होने से हम मुक्त होते हैं, क्योंकि वो शाश्वत है, वो बदलते नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ के माता पिता भाई बहन सब बदल जाते हैं, आज जो माता पिता है वो थोड़ी अगले जीवन में माता पिता रहेंगे, अगले जीवन में और कोई होगा, अगले जीवन में और कोई होगा, बदलते रहते हैं, लेकिन वो शाश्वत है। इसीलिए उस परिवार के लिए हमें आसक्ति होनी चाहिए, और वो आसक्ति होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे।